ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 36 सीट पर जीत दर्ज की है और 10 सीट निर्विरोध जीती। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है। नतीजों के बाद में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर श्री खांडू और मंत्रिपरिषद से नई सरकार के शपथ लेने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। वहीं सिक्किम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने एकतरफा जीत हासिल की। 32 सदस्यीय विधानसभा में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीट जीती और एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली। पश्चिम बंगाल में बारासात और मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के 2 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 7वें चरण में 1 जून को मतदान हुआ था। पुनर्मतदान का निर्णय चुनाव अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। कल ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव और कुछ विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतगणना के रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और चक्रवात के बाद की स्थिति सहित कई विषयों पर समीक्षा बैठकें की। देश में भीषण गर्मी की स्थिति की समीक्षा के लिए हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि आग से जुड़ी घटनाओं से निपटने और उन्हें रोकने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त अभ्यास किए जाने चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अग्निशमन और बिजली सुरक्षा की नियमित जांच की जानी चाहिए। वहीं रेमल तूफान के प्रभावों की समीक्षा बैठक में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तूफान प्रभावित राज्यों को हर प्रकार की सहायता देना जारी रखेगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 13 जिलों और 564 गांवों में 5 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत से बाढ़ से मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। बाढ़ से 8000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। इस बीच ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। उधर बचाव और राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम तैनात की गई है। राज्य सरकार ने प्रभावित में 193 राहत शिविर और 82 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ओडिशा स्थित भारतीय नौसेना के आरंभिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों को संबोधित किया। इस दौरान जनरल चौहान ने कहा कि कुशल, अनुशासित और प्रेरित युवा प्रदान करने की यह योजना सेना और राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति को बनाए रखने के प्रमुख सुधारों में एक है। नौसेना में अग्निवीरों के प्रशिक्षण का निरीक्षण करने आईएनएस चिल्का पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का दौरा भी किया। वहीं भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के अग्रणी विध्वंसक पोत आईएनएस मैसूर ने राष्ट्र की अपनी 25 वर्षों की गौरवशाली सेवा की रजत जयंती मनाई। स्वदेश में निर्मित यह पोत दिल्ली श्रेणी का दूसरा विध्वंसक जहाज है। अपने शानदार सेवा काल में आईएनएस मैसूर ने कई प्रमुख मिशन और अभियानों में भाग लिया है। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने ब्राजील के मार्सेलो जोरमन और ऑरलैंडो लूज को 7-5, 4-6 और 6-4 से हराया। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई टेनिस जोड़ी का दूसरे दौर में अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बाएज और ब्राजील के थियागो सेवोथ वाइल्ड से मुकाबला था, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी आज मुकाबले से हट गए, जिसके बाद ग्रैंड स्लैम के तीसरे दौर में अब बोपन्ना एबडेन का सामना एन श्रीराम बालाजी और मिगुएल एंजेल रेसे वेरेला मार्टिनेज की भारतीय मैक्सिकन जोड़ी से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।